मीखा अध्याय एक। यहूदिया के राजा योथाम, आहाज तथा हिजकिया के शासनकाल में मोरशेतवासी मीखा के पास यहावे का यह वचन पहुंचा, जिसे उसने शमरिया और यरूशलेम के बारे में दर्शन में देखा। हे लोगों, तुम सब सुनो, पृथ्वी और इसके सभी निवासियों, इस पर ध्यान दो कि प्रभु अपने पवित्र मंदिर से परम यहावे तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे। शमरिया और यरूशलेम के विरुद्ध न्याय। देखो, यहावे अपने निवास से निकलकर आ रहे हैं, वे नीचे उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदते हैं। उनके पैरों के नीचे पर्वत पिघल जाते हैं, और जैसे आग के आगे मोम और जैसे ढलान से गिरता पानी, वैसे ही घाटियां तड़क कर फट जाती है। यह सब याकोब के अपराध और इसराइल के लोगों के पाप का परिणाम है। याकोब का अपराध क्या है? क्या शमरिया नहीं? यहूदिया का ऊंचा स्थान, देवताओं के पूजा स्थल क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं शमरिया को मैदान में खंडर के ढेर सा कर दूंगा, एक ऐसी जगह जहां अंगूर की बारी लगाई जाती है। मैं उसके पत्थरों को नीचे घाटी में लुढ़का दूंगा और उसकी नींवें खुली कर दूंगा। उसकी सब मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। उसके मंदिर के सब भेंटों को आग में जला दिया जाएगा। मैं उसकी सब मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उसने अपनी भेंटों को वैश्यवृत्ति करके प्राप्त किया है, और वैश्यवृत्ति के मजदूरों के रूप में वे फिर उपयोग में लाई जाएगी। रोना और शोक मनाना। इसलिए मैं रोऊंगा और विलाप करूंगा, मैं खाली पैर और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं सियार के समान चिल्लाऊंगा और उल्लू की तरह कर रहूंगा। क्योंकि शमरिया का घाव असाध्य है, यह यहूदिया में फैल गया है, यह मेरी प्रजा के द्वार तक और तो और यह यरूशलेम तक पहुंच गया है। यह समाचार गाथ में ना दिया जाए, बिल्कुल भी ना रोया जाए। बेत अफरा में जाकर धूल में लौटो, तुम जो शाफिर में रहते हो, नंगे और निर्लज होकर आगे बढ़ो। जो तसनान नगर में रहते हैं, वे बाहर नहीं निकलेंगे। बैत एतसेल विलाप में डूबा हुआ है, यह तुम्हारा और बचाव नहीं कर सकता। जो मारोथ में रहते हैं, वे दर्द से छटपटा रहे हैं और मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहावे के द्वारा भेजी गई विपत्ति यरूशलेम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई है। तुम जो लाकीश में रहते हो, तेज भागने वाले घोड़ों को रथ में फांदने के लिए साज पहनाओ। तुम्ही से जियोन की पुत्री का पाप शुरू हुआ, क्योंकि तुम्ही में इसराइल का अपराध पाया गया। इसलिए तुम्हें ही मोरशेत गत को विदाई उपहार देना होगा। अकजीब के निवासी इसराइल के राजाओं के लिए धोखेबाज सिद्ध होंगे। हे मारे शाह के रहने वाले, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक विजेता को भेजूंगा। इसराइल के प्रतिष्ठित लोग अदुल्लाम को भाग जाएंगे। अपने प्यारे बच्चों के लिए शोक में अपने सिर के बाल मुंडाओ, गिद्ध के समान अपना सिर गंजा कर लो, क्योंकि तुम्हारी संतान तुम्हारे पास से बंधुआई में चली जाएगी। मीकाहा अध्याय दो। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना। धिक्कार है उन पर जो बुरे कार्यों की योजना बनाते रहते हैं, जो अपने बिछोने पर पड़े हुए षड्यंत्र रचते हैं। वो फटते ही अपनी युक्ति को पूरा करते हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ होती है। वे दूसरों के खेत का लोभ करके उसे हड़प भी लेते हैं, वे दूसरे के घर भी छीन लेते हैं, वे लोगों के घरों को छल करके ले लेते हैं और उनके पुरखों की संपत्ति को लूट लेते हैं। इसलिए यहावे का यह कहना है, मैं इन लोगों के विरुद्ध विपत्ति लाने की योजना बना रहा हूं, जिससे तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। तुम गर्व से सिर उठाकर फिर कभी ना चल सकोगे, क्योंकि यह विपत्ति का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे, वे इस शोक गीत के साथ तुम्हें ताना मारेंगे, हम पूर्णतः नाश हो गए हैं, मेरे लोगों की संपत्ति बांट दी गई है, परमेश्वर इसे मुझसे ले लेते हैं, वे हमारे खेत विश्वासघातियों को दे देते हैं। इसलिए यहावे के सभा में भूमि को लाटरी के द्वारा बांटने के लिए तुम्हारे पास कोई न होगा। झूठे भविष्यवक्ता, उनके भविष्यवक्ता कहते हैं, भविष्यवाणी मत करो, इन बातों के बारे में भविष्यवाणी मत करो, हमारे ऊपर कलंक नहीं लगेगा। हे याकोब के वंशजों, क्या यह कहा जाना चाहिए, क्या यहावे धीरज नहीं धरते, क्या वे ऐसा कार्य नहीं करते, क्या मेरे वचन से उसकी भलाई नहीं होती जो न्याय के रास्ते पर चलता है। हाल ही में मेरे लोग एक शत्रु के समान उठ खड़े हुए हैं। तुम उन व्यक्तियों के महंगे कपड़े छीन लेते हो जो बेफिक्र होकर जाते रहते हैं, मानो वे युद्ध से लौट रहे हो। तुम मेरे लोगों के महिलाओं को उनके खुशहाल घरों से निकाल देते हो। तुम उनकी संतान से मेरी आशीष को हमेशा के लिए छीन लेते हो। चलो उठो, यहां से चले जाओ, यह तुम्हारे आराम की जगह नहीं है, क्योंकि यह अशुद्ध हो गई है, यह नाश हो गई है और इसका कोई उपचार नहीं है। यदि कोई झूठा और धोखा देने वाला व्यक्ति आकर यह कहता है, मैं तुम्हारे पास बहुत ही अंगूर की दाख मधु और जो की दाख मधु होने की भविष्यवाणी करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति इन लोगों के लिए उपयुक्त भविष्यवक्ता होगा। छुटकारे की प्रतिज्ञा। हे याकोब, निश्चित रूप से मैं तुम सबको एकत्र करूंगा, मैं निश्चित रूप से इज़राइल के बचे लोगों को इकट्ठा करूंगा, जैसे भेड़े भेड़शाला में एकत्र की जाती है, जैसे चरागाह में झुंड एकत्रित किया जाता है, वैसे ही मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। उस जगह में लोगों की भीड़ लग जाएगी। वह जो बाड़े को तोड़कर रास्ता खोलता है, वह उनके आगे आगे जाएगा, वे द्वार को तोड़कर बाहर चले जाएंगे, उनके राजा उनके आगे आगे जाएगा, स्वयं यहावे उनका अगुआ होंगे। मिकाहा अध्याय 3। अगुओं और भविष्यवक्ताओं को डांट। तब मैंने कहा, हे याकोब के अगुओं, हे इज़राइल के शासकों, सुनो, क्या तुम्हें न्याय से प्रेम नहीं करना चाहिए? तुम जो भलाई से घृणा करते हो और बुराई से प्रेम करते हो, तुम जो मेरे लोगों की खाल और उनकी हड्डियों से मांस नोच लेते हो, तुम जो मेरे लोगों का मांस खाते हो, उनकी खाल खींच लेते हो और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उनकी अस्थियों को चूर्ण कर देते हो, तुम जो उनको कड़ाही में पकाने वाले मांस या बर्तन में रखे मांस की तरह काट डालते हो, तब वे यहावे को पुकारेंगे, पर यहावे उनकी नहीं सुनेंगे। उनके बुरे कामों के कारण उस समय वह अपना मुख उनसे छिपा लेंगे। यहावे का यह कहना है, वे भविष्यवक्ता जो मेरे लोगों को भटका देते हैं, यदि उनको खाने को कुछ मिलता है, तब वे शांति की घोषणा करते हैं, पर जो व्यक्ति उनको खिलाने से मना करता है, उसके विरुद्ध लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें बिना बताए तुम्हारे ऊपर रात्रि आ जाएगी और बिना बताए तुम्हारे ऊपर अंधेरा छा जाएगा। इन भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्यास्त हो जाएगा और दिन रहते उन पर अंधेरा छा जाएगा। भविष्यदर्शी लज्जित होंगे और भविष्य बताने वाले कलंकित होंगे, वे सब लज्जा से अपना मुंह ढांप लेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कोई उत्तर ना मिलेगा। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं यहावे के आत्मा के साथ सामर्थ से तथा न्याय और बल से भरा हुआ हूँ, ताकि याकोब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप बता सकूं। हे याकोब के अगुओं, हे इज़राइल के शासकों, यह बात सुनो, तुम जो न्याय को तुच्छ समझते हो और सब सही बातों को बिगाड़ते हो, तुम जो ज़ियोन को रक्तपात से और यरूशलेम को दुष्टता से भरते हो, उसके अगुए घूस लेकर न्याय करते हैं, उसके पुरोहित दाम लेकर शिक्षा देते हैं और उसके भविष्यवक्ता पैसों के लिए भविष्य बताते हैं, तो भी वे यहावे की मदद की कामना करते हुए कहते हैं, क्या यहावे हमारे मध्य में नहीं है, कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी। इसलिए तुम्हारे ही कारण ज़ियोन पर खेत के सदृश हल चला दिया जाएगा, यरूशलेम खंडर हो जाएगा तथा भवन की पहाड़ी वन में पूजा स्थल का स्वरूप ले लेगी। मिकाहा अध्याय 4 यहावे का पर्वत कि अंत के दिनों में वह पर्वत और पहाड़ जिस पर यहावे का भवन है उसे दृढ़ और ऊंचा किया जाएगा और सब जाति के लोग बहती हुई नदी के समान उस ओर आएंगे और जाति के लोग कहेंगे आओ हम यहावे के पर्वत याकोब के परमेश्वर के भवन को चले कि वह हमें अपने नियम सिखाए और हम उनके मार्गों पर चले क्योंकि सियोन से व्यवस्था निकलेगी और यरूशलेम से यहावे का वचन आएगा परमेश्वर जनताओं के बीच न्याय करेंगे और लोगों की परेशानियां दूर करेंगे तब वे अपनी तलवार को पीट पीट कर हल्के फाल तथा अपने भालों को हसियां बना लेंगे एक देश दूसरे के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा तथा उन्हें फिर कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा हर एक जन अपनी ही अंगूर की लता और अपनी ही अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठेगा और उन्हें कोई नहीं डराएगा क्योंकि सर्वशक्तिमान यहावे ने कहा है सब जातियां अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चले तो चले पर हम सदा सर्वदा यहावे अपने परमेश्वर का नाम लेकर चलेंगे यहावे की योजना उस दिन यह यहावे की घोषणा है मैं लंगड़ों को इकट्ठा करूंगा मैं बंधुआ लोगों को और उन लोगों को भी इकट्ठा करूंगा जिन्हें मैंने दुख दिया है मैं लंगड़ों को अपना बचा हुआ भाग और भगाए हुओं को एक मजबूत जाति बनाऊंगा तब उस समय से लेकर सदा सर्वदा तक यहावे जियोन पर्वत से उन पर शासन करते रहेंगे जहां तक तुम्हारा सवाल है हे झुंड की चौकसी के मचान हे जियोन की पुत्री के सुरक्षा गढ़ तुम्हें तुम्हारे पहले का राज्य दे दिया जाएगा यरूशलेम की पुत्री को राजपद दिया जाएगा तुम उच्च स्वर में क्यों चिल्ला रही हो क्या तुम्हारा कोई राजा नहीं है क्या तुम्हारा शासन करने वाला नाश हो गया है कि तुम जच्चा स्त्री के समान दर्द से छटपटा रही हो हे जियोन की बेटी जच्चा स्त्री की तरह दर्द से छटपटाओ क्योंकि अब तुम्हें शहर छोड़कर खुले मैदान में डेरा डालना जरूरी है तुम बाबेल जाओगी और तुम बचाई जाओगी वहां यहावे तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएंगे पर अब तो तुम्हारे विरुद्ध में बहुत से राष्ट्र इकट्ठे हुए हैं वे कहते हैं उसे अशुद्ध होने दो जियोन की दुर्गति हमारे आनंद का विषय हो पर वे यहावे के विचारों को नहीं जानते हैं वे उसकी उस योजना को नहीं समझते कि उसने उन्हें पोलियों के समान खलियान में इकट्ठा किया है हे जियोन की बेटी उठ और दावनी कर क्योंकि मैं तुम्हें लोहे के सींग दूंगा मैं तुम्हें पीतल के खुर दूंगा और तुम बहुत सी जातियों को टुकड़े टुकड़े कर दोगी तुम उनकी लूटी गई चीजें यहावे को और उनकी संपत्ति सारे पृथ्वी के प्रभु को अर्पित करोगी मीखा अध्याय 5 बैतलेहम से एक प्रतिज्ञा किया हुआ शासक हे सैन्य दलों के शहर अपने सैनिकों को कतार में कर लो क्योंकि हमारे विरुद्ध एक घेरा डाला गया है वे इज़राइल के शासक के गाल पर लाठी से प्रहार करेंगे पर तुम हे एफ्राथा के बैतलेहम यद्यपि तुम यहूदियों के वंशजों में छोटे हो तुमसे ही मेरे लिए एक व्यक्ति का आगमन होगा जो इज़राइल के ऊपर शासक होगा जिसका उद्रम पुराने समय से प्राचीन काल से है इसलिए इज़राइल को उस समय तक त्याग दिया जाएगा जब तक वह जो प्रसव पीड़ा में है एक बालक को जन्म नहीं देती और उसके बाकी भाई इज़राइलियों से मिल जाने के लिए लौट नहीं जाते वह यहावे के बल से यहावे अपने परमेश्वर के नाम के प्रताप से उठ खड़ा होगा और अपने झुंड की देख रेख करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि तब पृथ्वी की छोर तक लोग उसकी महानता को जानेंगे और वह हमारी शांति होगा जब अशूरवासी हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारे गढ़ों में प्रवेश करेंगे हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 सेनापति खड़े कर देंगे जो अशूर देश पर निमरोद के देश पर तलवार से शासन करेंगे वह हमें अशूरवासियों से छुड़ाएगा जब वे हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार करेंगे याकोब का बचा भाग बहुत से लोगों के बीच होगा। वह यहावे द्वारा भेजे ओस घास पर पड़ने वाली वर्षा के समान होगा, जो किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी मनुष्य पर निर्भर रहता है। याकोब का बचा भाग जातियों के बीच और लोगों के बीच ऐसा होगा जैसा एक सिंह जंगली जानवरों के बीच होता है, और एक जवान सिंह जो भेड़ों के झुंड के बीच होता है, और वह उनके मध्य से जाते हुए उन पर झपटता है और उनको फाड़ डालता है, और कोई उन्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारा हाथ अपने शत्रुओं के ऊपर विजय उल्लास में ऊंचा उठेगा और तुम्हारे सब शत्रु नाश किए जाएंगे। यहावे की घोषणा है, उस दिन मैं तुम्हारे घोड़ों को तुम्हारे बीच नाश कर दूंगा और तुम्हारे रथों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे देश के शहरों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे गढ़ों को ध्वस्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे बीच जादू टोने को समाप्त कर दूंगा और तुम फिर कभी ज्योतिष की बात ना कर सकोगे। मैं तुम्हारे मूर्तियों और तुम्हारे बीच तुम्हारे पवित्र पत्थरों को नाश कर दूंगा। तुम फिर कभी अपने हाथ से बनाए चीजों की आराधना नहीं करोगे। जब मैं तुम्हारे शहरों का विनाश करूंगा, तो मैं तुम्हारे बीच से तुम्हारे अशेरा स्तंभों को उखाड़ फेंकूंगा। मैं गुस्सा और क्रोध में उन जनताओं से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। मीका अध्याय 6। इज़राइल के विरुद्ध यहावे का मामला। सुनो कि यहोवा क्या कहते हैं, उठो और पर्वतों के आगे मेरा मामला रखो, पहाड़ियां सुने कि तुम क्या कहते हो। हे पर्वतों, यहावे के द्वारा लगाए आरोपों पर ध्यान दो। हे पृथ्वी के अटल नींव, तुम भी सुनो, क्योंकि यहावे का अपने लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा है। वे इज़राइल के विरुद्ध एक मामला दायर कर रहे हैं। हे मेरे लोगों प्रजा, मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या बोझ डाला है। मैंने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला है और तुम्हें दासत्व के बंधन से छुड़ाया है। मैंने तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मोशे को भेजा, अहरोन और मिरियम को भी भेजा। हे मेरे लोगों, याद करो मोआब के राजा बालाक ने क्या षड्यंत्र किया था, और बेओर के पुत्र बिलियाम ने क्या उत्तर दिया था। शित्तीम से गिलगाल तक अपनी यात्रा का स्मरण करो कि तुम यहावे के धर्मी कामों को जानो। मैं यहावे के सामने क्या लेकर आऊं और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर के सामने दंडवत करूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक साल के बछड़े लेकर उसके सामने आऊं? क्या यहावे की प्रसन्नता के लिए हजारों मेंढे अथवा जैतून तेल की 10,000 नदियां पर्याप्त होंगी? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए अपने पहलौठे पुत्र का बलिदान करूं, या अपनी आत्मा के पाप के अपने जन्माए किसी का बलिदान करूं? हे मनुष्य, उन्होंने तुम्हें दिखाया है कि क्या अच्छा है, और यहावे तुमसे क्या अपेक्षा करता है। न्याय के काम करो और दया करो, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। इज़राइल का अपराध और दंड। सुनो, यहावे शहर को पुकार रहे हैं, और आपके नाम का भय मानना ही बुद्धिमता है। डंडा और उसे नियुक्त करने वाले की बात ध्यान से सुनो। हे दुष्ट घर, क्या मैं अब भी तुम्हारे अनाचर से कमाए धन और उस छोटे माप को भूल जाऊं जो अभिशप्त है? क्या मैं किसी को गलत वजन की थैली के साथ उसे उसके गलत मापों से छुटकारा दूं? तेरे धनवान लोग हिंसा करते हैं, तेरे निवासी झूठे हैं, और उनकी जीभ धोखा देने वाली बात करती है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण नाश करना, तुम्हारा पतन करना शुरू कर चुका हूँ। तुम खाना तो खाओगे, किंतु संतुष्टि नहीं मिलेगी। खाने के बाद भी तुम्हारा पेट खाली रहेगा। तुम जमा तो करोगे, पर बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बचत को मैं तलवार से लुटवा दूंगा। तुम बोओगे पर फसल नहीं काटोगे। तुम जैतून का तेल तो निकालोगे, किंतु उस तेल का उपयोग ना कर सकोगे। तुम अंगूर को तो रौंदोगे, पर उसका दाख मधु पान ना कर सकोगे। तुमने ओमरी के विधि विधान और अहाब के घर के सब रीति रिवाजों का पालन किया है, तुमने उनकी परंपराओं का भी पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा और तुम्हारे लोग हंसी के पात्र होंगे, तुम मेरे लोगों का अपमान सहोगे। मीका अध्याय 7। इज़राइल की दुर्गति। मेरी क्या दुर्गति है, मैं उस मनुष्य के जैसा हूं जो अंगूर की बारी में लवनी के छूटे अंगूर को धूपकाल में बटोरता है, खाने के लिए अंगूर का कोई गुच्छा नहीं बचा है। मैंने शुरू के अंजीर के फलों की जो लालसा की थी वे भी नहीं है। विश्वास योग्य लोग देश से नाश हो गए हैं, एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा है, हर एक जन खून बहाने के घात में लगा रहता है, वे जाल बिछाकर एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। उनके हाथ बुराई के काम करने में माहिर है, शासन करने वाले उपहार की मांग करते हैं, न्यायाधीश घूस लेते हैं, शक्तिशाली लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति बलपूर्वक करते हैं, वे सब मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। उनमें जो सर्वोत्तम माना जाता है वह एक कटीली झाड़ी के जैसा है, उनमें जो सबसे ज्यादा ईमानदार समझा जाता है वह एक कटीले बाड़े से भी बुरा है। तुम्हारे पास परमेश्वर के आने का समय आ गया है, अर्थात तुम्हारे पहरेदार के खतरे की घंटी बजाने का दिन आ गया है, अब तुम्हारे घबराने का समय है। किसी पड़ोसी पर विश्वास ना करना और ना ही अपने किसी मित्र पर भरोसा करना, यहां तक कि अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बात करना, क्योंकि पुत्र अपने पिता का अनादर करता है, पुत्री उसकी माता के विरुद्ध तथा बहू उसकी सास के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। मनुष्य के शत्रु उसके परिवार के सदस्य ही होते हैं, पर जहां तक मेरी बात है, मेरी आशा यहावे पर लगी रहती है। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता हूँ, मेरे परमेश्वर मेरी सुनेंगे, इज़राइल उठ खड़ा होगा। हे मेरे शत्रु, मेरी स्थिति पर आनंद मत मना, यद्यपि मैं गिर गया हूँ पर मैं उठ खड़ा होऊंगा, यद्यपि मैं अंधकार में बैठा हुआ हूँ पर यहावे मेरी ज्योति होंगे, क्योंकि मैंने उनके विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं तब तक यहावे के क्रोध सहता रहूंगा जब तक कि वे मेरा मामला सुनकर मुझे न्याय प्रदान ना करें। वही मुझे उस उजियाले में ले आएंगे और मैं उनकी धार्मिकता को देखूंगा, तब मेरा शत्रु यह देखेगा और लज्जा से अपना मुंह ढांप लेगा। यह शत्रु वही है जिसने मुझसे कहा था, कहाँ है यहावे तुम्हारा परमेश्वर? तब मैं उस शत्रु के पतन को देखूंगा, यहां तक कि वह गली के कीचड़ की तरह पैरों तले रोंदा जाएगा। तुम्हारे दीवारों को बनाने का दिन और तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाने का दिन आएगा। उस दिन लोग तुम्हारे पास अशूर और मिस्र देश के शहरों से आएंगे, यहां तक कि मिस्र देश से लेकर इफ्रात नदी तक से और समुद्र से समुद्र के बीच और पहाड़ से पहाड़ के बीच के देशों से लोग तुम्हारे पास आएंगे। पृथ्वी के निवासियों के कारण उनके कामों के फल स्वरूप पृथ्वी उजाड़ और निर्जन हो जाएगी। प्रार्थना और प्रशंसा। अपने लोगों की रखवाली, अपने उत्तराधिकार में पाए झुंड की रखवाली अपनी लाठी से करना, जो बंजर भूमि में और उपजाऊ चरागाह में अपने बूते रहते हैं, उन्हें बहुत पहले के समय जैसे बाशान और गिलियाद में चरने दो, जब तुम मिस्र देश से निकलकर आए उन दिनों के जैसे, मैं उन्हें आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। जाति जाति के लोग यह देखेंगे और अपने शक्ति से वंचित लज्जित होंगे, वे लज्जा के मारे अपना मुंह अपने हाथों से ढक लेंगे और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सांप के समान और भूमि पर रेंगने वाले जंतु के समान धूल चाटेंगे, वे अपने मान से कांपते हुए निकलेंगे, वे यहावे हमारे परमेश्वर से डरेंगे और तुमसे भयभीत होंगे। आपके जैसा और कौन परमेश्वर है जो अपने निज भाग के बचे हुओं के पापों और अपराधों को क्षमा करते हैं? आपका क्रोध हमेशा के लिए नहीं होता, पर आप दया दिखाने में प्रसन्न होते हैं। आप हम पर फिर दया करेंगे, आप अपने पैरों तले हमारे पापों को कुचल देंगे और हमारे दुष्टता के कामों को गहरे समुद्र में फेंक देंगे। आप उस शपथ के अनुरूप जो आपने वर्षों पहले हमारे पूर्वजों से की थी याकोब के लोगों के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे और अब्राहम के वंशजों को अपना प्रेम दिखाएंगे।